एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम में से कईयों की जिंदगी का हिस्सा है,
हाँ।
लेकिन जिसके इतिहास और असर के बारे में हम शायद कम ही सोचते हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधन यानी कॉन्ट्रासेप्शन की, और इसके लिए हम देख रहे हैं डोना जे ड्रूकर की किताब कॉन्ट्रासेप्शन अ कंसाइज हिस्ट्री।
हाँ, अ कंसाइज हिस्ट्री।
नाम भले ही संक्षिप्त इतिहास हो, पर यह किताब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। सही में?
सही कहा। ये सिर्फ मेडिकल साइंस की कहानी नहीं है, ये किताब बताती है कि कैसे गर्भ निरोधन ने पिछले 100-150 सालों में हमारे समाज को,
रिश्तों को,
हाँ रिश्तों को, आजादी की सोच और हाँ पॉलिटिक्स को भी गहराई से बदला है।
और ये आज भी उतना ही जरूरी मुद्दा है, शायद पहले से भी ज्यादा।
तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले लेखक डोना जे ड्रूकर के बारे में थोड़ी बात करते हैं।
हाँ जरूर, वो कोई आम इतिहासकार नहीं है।
हाँ, वो तकनीक, मेडिसिन और जेंडर हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं। जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी रही हैं।
और उनकी खास बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीन या दवा की तरह नहीं देखती।
अच्छा।
एकदम, वो पूछती हैं इन चीजों से किसे फायदा होता है, किसकी जिंदगी बदलती है, और किसके शरीर पर किसकी मर्जी से या बिना मर्जी के इसका इस्तेमाल होता है।
ये तो बहुत जरूरी सवाल है।
हाँ, और उनकी पिछली किताब सेक्स के वर्गीकरण पर थी।
हाँ,
तो वो जेंडर और सेक्सुअलिटी के मुद्दों को बहुत बारीकी से समझती हैं।
तो मतलब वो गर्भ निरोधकों को ऐसी चीजें मानती हैं जिनकी अपनी सोशल लाइफ होती है।
बिल्कुल, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आर्टिफैक्ट्स विद सोशल लाइव्स। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक की चीजें नहीं है, समाज में इनकी अपनी कहानी चलती है।
ये नजरिया ही इस किताब को खास बनाता है।
अच्छा, तो किताब करती क्या है मोटे तौर पर अगर देखें?
हाँ,
तो ये 20वीं और 21वीं सदी में गर्भ निरोधन के तरीकों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और उनसे जुड़े सामाजिक आंदोलनों का एक खाका खींचती है।
लेकिन सिर्फ लिस्ट नहीं है कि कब क्या इजाद हुआ है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का असली मुद्दा ये है कि गर्भ निरोधन की तकनीकें कभी भी न्यूट्रल या कई सीधी साधी नहीं होती।
अच्छा, मतलब?
मतलब ये कि वो हमेशा समाज की बड़ी बहसों से जुड़ी रही हैं, जैसे मर्दों औरतों की बराबरी हो गई,
जेंडर इक्वालिटी, हाँ, या फिर अपनी बॉडी पर अपना हक, है ना, बॉडीली ऑटोनॉमी जैसे कहते हैं।
बिल्कुल, और पब्लिक हेल्थ, सरकार का क्या रोल है, यहाँ तक कि दुनिया के पॉलिटिक्स भी, सब इसमें उलझा हुआ है।
और ड्रकर एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं, शायद सबसे अहम बात।
हाँ।
कि हर गर्भ निरोधक तरीके का, चाहे वो डायफ्राम हो, गोली हो या नसबंदी,
हाँ,
उसका एक दोहरा चेहरा है। एक तरफ इसने करोड़ों लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपनी जिंदगी कंट्रोल करने की आजादी दी है,
ये तो है।
लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने, बड़ी कंपनियों को मुनाफा कमाने और कभी कभी तो सरकारों द्वारा जबरदस्ती करने के लिए भी हुआ है।
ओह, तो ये किताब इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करती है।
हाँ, कि कैसे बच्चे पैदा करने या न करने का कंट्रोल हमारी आज की जिंदगी, आजादी और पहचान के लिए इतना जरूरी बन गया।
चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। गोली यानी द पिल आने से पहले क्या माहौल था?
हाँ, वो दौर कैसा था? सोचिए, 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत। देखो, ज्यादातर जगहों पर गर्भ निरोधन गैर कानूनी था
और लोग खुलकर बात करने से भी कतराते थे।
बिल्कुल, अमेरिका में तो कॉमस्टॉक एक्ट जैसे कानून थे जो गर्भ निरोधक जानकारी या सामान भेजना भी जुर्मानते थे।
ऐसे में मार्गरेट सैंगर अमेरिका में और मैरी स्टोप्स ब्रिटेन में कुछ हिम्मत वाली औरतें सामने आईं।
उन्होंने देखा कि गरीब औरतें लगातार बच्चों को जन्म देते देते कैसे अपनी सेहत और जिंदगी तबाह कर रही थी।
तो उन्होंने क्लिनिक खोले, जानकारी बांटी। उस जमाने के तरीके क्या थे? कॉन्डम थे,
डायफ्राम, वो गर्भाशय के मुंह को ढकने वाली एक छोटी कटोरी जैसी चीज।
हाँ, और स्पर्मिसाइड, मतलब शुक्राणुओं को मारने वाला केमिकल।
लेकिन ये सब आसानी से मिलते नहीं थे सबको।
नहीं, ये ज्यादातर अमीरों या शहरों में रहने वालों को ही आसानी से मिलते थे।
हाँ, और इस शुरुआती आंदोलन की राजनीति भी सीधी नहीं थी जैसा आपने कहा।
हाँ, उसमें भी पैंच थे। एक तरफ तो औरतों की सेहत और आजादी की अच्छी सोच थी,
लेकिन दूसरी तरफ
कुछ लोग यूजेनिक्स यानी नस्ल सुधार जैसी खतरनाक सोच से भी जुड़े थे। वो मानते थे कि कुछ खास लोगों को ही बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये शुरुआत थोड़ी, कह सकते हैं, मिलीजुली थी।
काफी कॉम्प्लिकेटेड।
फिर आई गोली, द पिल।
हाँ,
शायद 20वीं सदी का सबसे मशहूर या कहूं बदनाम आविष्कार।
इसने तो खेल ही बदल दिया।
बिल्कुल।
इसकी कहानी भी फिल्मी है, मार्गरेट सैंगर का आइडिया था
और कैथरीन मैकॉर्मिक नाम की एक अमीर महिला की जबरदस्त फंडिंग।
हाँ, और फिर ग्रेगरी पिंकर्स और जॉन रॉकस जैसे साइंटिस्ट का काम। उन्होंने लैब में ऐसे हार्मोन बनाए
जो औरतों में अंडा बनने मतलब ओव्यूलेशन को ही रोक देते थे।
हाँ बिल्कुल, ये साइंस की बड़ी कामयाबी थी।
लेकिन ड्रिकर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती हैं, वो हिस्सा जो अक्सर छुपाया जाता है।
हाँ, 1950 के दशक में इस गोली का पहला बड़ा ट्रायल कहाँ हुआ?
प्यूर्टोरिको में।
हाँ, प्यूर्टोरिको में गरीब औरतों पर, उनमें से कई पढ़ी लिखी नहीं थी।
अच्छा।
उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना, उनकी पूरी सहमति के बिना ट्रायल में शामिल किया गया।
ओह।
और जब उन्होंने साइड इफेक्ट्स की शिकायत की, जैसे चक्कर आना या खून के थक्के जमना,
तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया।
ये बात वाकई चौंकाने वाली है। ये किताब की उस दोहरेपन वाली बात का कितना सटीक उदाहरण है, एक तरफ आजादी दूसरी तरफ कंट्रोल।
बिल्कुल। गोली ने पश्चिमी देशों में लाखों औरतों को जबरदस्त आजादी दी, सेक्स और बच्चे पैदा करने को अलग कर दिया।
हाँ, जिसे सेक्सुअल रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें भी इसका बड़ा हाथ था।
हाँ, लेकिन इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं हाशिए पर पड़ी औरतों के शोषण पर रखी गई थी।
ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच के फर्क को भी दिखाता है ना?
हाँ, जिसकी बात डूकर बार बार करती हैं।
हाँ,
अमीर पश्चिमी देश बनाम विकासशील देश।
गोली के साथ ही एक और चीज पॉपुलर हुई, IUD।
हाँ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये वो छोटी सी चीज है जिसे डॉक्टर गर्भाशय में लगा देते हैं,
और ये हेल्थ अफसरों और सरकारों को बहुत पसंद आई।
क्यों पसंद आई, क्या खास था इसमें?
क्योंकि ये एक बार लगा दो तो सालों चलती है।
हाँ?
औरत को रोज कुछ याद रखने की जरूरत नहीं।
अच्छा, यूजर इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं।
हाँ, और ये बड़े पैमाने पर आबादी कंट्रोल करने के प्रोग्राम के लिए एकदम फिट बैठी।
ओह, तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंगल आ गया।
बिल्कुल, शीत युद्ध के जमाने में जब पॉपुलेशन बॉम्ब यानी बढ़ती आबादी का डर फैलाया गया।
हाँ, वो डर तो बहुत था।
तो पश्चिमी देशों और संस्थाओं ने भारत, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे कई देशों में बड़े बड़े IUD कैंप लगवाए, खूब पैसा दिया।
फिर से वही कहानी, बड़े सरकारी लक्ष्य और आम औरतों का अनुभव।
हाँ, कई औरतों को दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ, सही देखभाल नहीं मिली।
और फिर 1970 के दशक में अमेरिका में डालकॉन शील्ड नाम के एक IUD ने तो गहरी मचा दिया।
हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है।
उसका डिजाइन खराब था जिससे हजारों औरतों को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ, यानी बच्चेदानी और आसपास के अंगों में खतरनाक इन्फेक्शन।
बापरे,
कई बांझ हो गई, कुछ की मौत भी हो गई।
ये तो भयानक है।
हाँ, ये कॉर्पोरेट लापरवाही की मिसाल बन गया और इसने अमेरिका में सालों तक IUD का नाम खराब कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक के साथ आने वाले जोखिम अक्सर औरतों के मत्थे मर दिए जाते हैं।
अब आते हैं नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन पर। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये दुनिया में गर्भ निरोधन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है।
हाँ, ये बात चौंकाती है, पर इस पर बात कम होती है।
क्यों कम होती है?
शायद इसके इतिहास की वजह से।
और यहाँ भी वही दोहरी कहानी है।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ है वॉलंटरी यानी मर्जी से कराई गई नसबंदी, पुरुषों की वैसेक्टोमी और महिलाओं की ट्यूबल लाइगेशन।
हाँ, जो लोग अब और बच्चे नहीं चाहते, उनके लिए ये एक सुरक्षित, पक्का और आजादी देने वाला तरीका हो सकता है।
बिल्कुल, लेकिन इसका एक बहुत भयानक अतीत भी है।
यूजेनिक्स वाला?
हाँ, ड्रकर बताती हैं कि कैसे नसबंदी का इस्तेमाल यूजेनिक्स आंदोलन में एक हथियार की तरह हुआ।
किन लोगों पर? श्वेत, हिस्पैनिक, नेटिव अमेरिकन, औरतों को, गरीबों को, दिमागी या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को निशाना बनाकर उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई।
जबरदस्ती?
हाँ, और ये सिर्फ नाजी जर्मनी में नहीं हुआ, अमेरिका, स्वीडन जैसे कई विकसित देशों में भी 20वीं सदी में लंबे समय तक चला।
सोचिए, एक ही मेडिकल प्रोसेस किसी के लिए आजादी है और किसी के लिए मानवाधिकारों का उल्लंघन।
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन, किस पर और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है।
आखिर में ड्रकर गर्भपात यानी अबॉर्शन को भी इस चर्चा में शामिल करती हैं, जानबूझकर।
हाँ, वो कहती हैं कि इसे गर्भ निरोधन के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता।
क्यों?
क्योंकि जब बाकी तरीके फेल होते हैं या मिलते नहीं, तो गर्भपात ही एक बैकअप की तरह काम करता रहा है, ऐतिहासिक रूप से भी और आज भी।
अच्छा, किताब गर्भपात पर कानूनी और सियासी लड़ाइयों का जिक्र करती है, जैसे अमेरिका में रो वर्सेस वेड केस।
हाँ, उसका जिक्र है, वो केस जिसने गर्भपात को कानूनी बनाया था, हालांकि अब वो फैसला पलट दिया गया। ड्रकर दिखाती हैं कि कैसे ये एक निजी मेडिकल फैसला होने के बजाय समाज का सबसे ज्यादा बांटने वाला सियासी मुद्दा बन गया।
और गर्भपात का अधिकार अपने शरीर पर अपने अधिकार की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से कुछ बड़े सबक या कहें कि थीम्स निकल कर आते हैं।
हाँ, कई हैं। सबसे बड़ा सबक तो वही है, मुक्ति और नियंत्रण का दोहरापन, ड्यूअलिटी ऑफ लिबरेशन एंड कंट्रोल।
हर तकनीक के दो पहलू।
हाँ, गोली हो, आईओडी हो या नसबंदी, उसके दोनों पहलू रहे हैं। कुछ लोगों को आजादी मिली तो कुछ का शोषण हुआ या उन्हें कंट्रोल किया गया।
ये हमें सिखाता है कि चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर लेबल ना करें, उनकी जटिलता को समझें।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात है गर्भ निरोधन का लैंगिक बोझ, जेंडर्ड बर्डन।
हाँ, ये तो बहुत साफ दिखता है। बच्चा ना हो, इसकी जिम्मेदारी, शरीर पर असर, समाज का दबाव, पैसे का खर्च ज्यादातर औरतों पर ही आती है।
आप देखिए, ज्यादातर रिसर्च और नए तरीके औरतों के शरीर पर ही फोकस करते हैं।
हाँ, मर्दों के लिए गर्भ निरोध के नए तरीकों पर इतनी धीमी रफ्तार से काम होना क्या दिखाता है?
यही कि समाज में कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि ये औरतों का काम है। और ये चीज तो हम अपने आसपास भारत में भी रोज देखते हैं, है ना?
बिल्कुल।
परिवार नियोजन की बात आती है तो अक्सर औरतों को ही आगे कर दिया जाता है।
तीसरा थीम।
तीसरा, गर्भ निरोधन हमेशा से एक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा रहा है। ये सिर्फ बेडरूम की बात नहीं है।
सरकारें, धार्मिक संस्थाएं, दवा कंपनियां, सबका इसमें दखल रहा है।
हाँ, कभी से पॉपुलेशन बम से लड़ने का हथियार बनाया गया तो कभी दवा कंपनियों ने इससे मोटा मुनाफा कमाया।
कौन सी तकनीक आगे बढ़ेगी, कौन सी नहीं, इसमें भी पैसे और पावर का खेल होता है।
चौथा, वो ग्लोबल नॉर्थ साउथ का विभाजन और मेडिकल साम्राज्यवाद।
हाँ, पश्चिम में कहानी सुनाई जाती है चॉइस और एम्पावरमेंट की, लेकिन विकासशील देशों में जबरदस्ती और आबादी कंट्रोल का इतिहास रहा है।
प्योर्टो रिको के ट्रायल या भारत में लगे आईयूडी कैंप इसके उदाहरण हैं।
ये हमें आज भी दुनिया भर में चल रही हेल्थ योजनाओं और उनके पीछे की राजनीति पर सवाल उठाने को कहता है।
बिल्कुल। और पांचवा।
गर्भ निरोधन और गर्भपात का गहरा रिश्ता। डकर जोर देती हैं कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं,
अविभाज्य हैं।
हाँ, ये दोनों ही औरतों के प्रजनन स्वास्थ्य और अपने शरीर पर अधिकार के लिए जरूरी हैं। एक पर पाबंदी का असर दूसरे पर भी पड़ता है।
किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। सीधे कोट्स तो नहीं है हमारे पास, पर उनके विचारों का सार।
हाँ, पहला विचार उसी दोहरेपन पर। हर गर्भ निरोधक तरीके का इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे उसमें व्यक्ति को आजाद करने की ताकत है और साथ ही कैसे ताकतवर संस्थाएं उसे आबादी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।
मतलब तकनीक खुद में अच्छी या बुरी नहीं, उसका इस्तेमाल किस माहौल में किस नियत से हो रहा है ये तय करता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार मर्दों और औरतों की बीच के बोझ पर।
हाँ, वो क्या था?
एक आदर्श गर्भ निरोधक की खोज ज्यादातर औरतों के शरीर को ठीक करने, बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश रही है, जबकि मर्दों के शरीर को इस मामले में काफी हद तक मेडिकल दखल से बाहर रखा गया है।
ये दिखाता है कि बच्चे पैदा करने या ना करने को कैसे समाज ने औरतों की जिम्मेदारी मान लिया है। बहुत गहरी बात है ये।
और तीसरा, गर्भपात से जुड़ाव पर।
हाँ,
हम गर्भपात के इतिहास को समझे बिना गर्भ निरोधन का इतिहास नहीं समझ सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अपने शरीर पर अपने अधिकार की लड़ाई।
यानी हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखना होगा।
हाँ जी।
तो भाई, इस सारे इतिहास से हम आज क्या सीख सकते हैं, मतलब आम जिंदगी में कैसे काम आ सकता है यह सब?
पहली बात तो ये कि हम अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जागरूक बन सकते हैं।
मतलब डॉक्टर के पास जाएं तो सिर्फ सुने नहीं, सवाल भी पूछे।
बिल्कुल। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, मेरे लिए क्या सही है, ये समझे कि मेडिकल साइंस भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसका भी अपना इतिहास और सीमाएं हैं।
दूसरी बात,
हमें ये समझना होगा कि हमारे अधिकार, खासकर प्रजनन अधिकार, कोई गारंटी नहीं है।
ये मिले हैं तो छीने भी जा सकते हैं।
हाँ, ये राजनीतिक लड़ाइयों से मिले हैं और छीने भी जा सकते हैं, तो एक नागरिक के तौर पर हमें सजग रहना होगा,
चाहे वोट डालकर हो या उन संस्थाओं का साथ देकर जो इन अधिकारों के लिए काम करती हैं।
हाँ। तीसरा, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर एक आलोचनात्मक नजर रखना जरूरी है।
मतलब जब हम बढ़ती आबादी या ग्लोबल हेल्थ योजनाओं के बारे में सुने
तो रुक कर सोचें, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहीं इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं, खासकर जब निशाना विकासशील देशों की औरतें हों।
और चौथा, शायद सबसे निजी स्तर पर।
हाँ, चौथा शायद सबसे निजी स्तर पर, ये हमें अपने रिश्तों में बेहतर बातचीत करने में मदद कर सकता है।
गर्भ निरोधन की जिम्मेदारी किसकी है, क्या इसे बराबरी से बांटा जा सकता है?
हाँ, इसके खर्चे, इसके साइड इफेक्ट्स, इन सब पर खुलकर बात होनी चाहिए।
मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात ये जानना थी कि गर्भ निरोधन का मुद्दा कितना ज्यादा राजनीतिक रहा है, और यूजेनिक्स जैसी सोच से इसका इतना गहरा नाता था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
हाँ, ये सिर्फ एक हेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पावर, कंट्रोल और आजादी की एक उलझी हुई कहानी है।
और आपके लिए?
और मेरे लिए वो दोहरेपन वाला नजरिया बहुत काम का लगा। चीजों को सिर्फ काले या सफेद में देखने के बजाय उनके विरोधाभासों को समझना कितना जरूरी है।
हाँ।
और हाँ, अपने शरीर पर अपना अधिकार, बॉडीली ऑटोनॉमी, ये बात बार बार सामने आती है।
सही।
साइंस हमें तरीके दे सकती है, लेकिन उन तरीकों का इस्तेमाल सच में आजादी के लिए हो, कंट्रोल के लिए नहीं, ये तो समाज में न्याय, बराबरी और मानवाधिकारों की सोच से ही पक्का हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।